أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساری تعریف اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کے لیے جس نے زندگی کے اس ماہ و ایام کی بھاگ دوڑ میں آپ کو مجھے ابھی تک سانس لینے کا موقع دیا ہوا ہے. کتنے تھے اور کتنے آئیں گے, لیکن ہم اس میں ایک چھوٹا سا نام, ایک چھوٹی سی ہستی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کریں. آئیے شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے, و ابراہیم الذی وفا. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سورة نجم کی آیت نمبر 37 سے 41, 37 سے 41. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ خوبصورت پیغام ہے رب کا کہ دنیا کا ہر ٹائٹل اس پہ قربان کر دیا جائے. آپ نے پرائیڈ آف پرفارمنس کا نام سنا ہوگا, آپ نے دنیا میں آسکر ایوارڈ کی باتیں سنی ہوں گی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ابراہیم الذی وفا, یہ وہ خوبصورت ٹائٹل ہے کہ جس کو سامنے رکھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ہم بھی تو اپنے بارے میں کچھ سوچیں کہ ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. ہمارا نام دنیا میں کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو جائے, لیکن کیا آسمانوں پہ بھی ہمارے نام کی کوئی دھوم ہے؟ کیا وہاں بھی کوئی ذکر خیر ہے؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی, جنہوں نے حق کے اطاعت اور رسالت کو پورا کیا, یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی, پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس ایک آیت نے بہت ساری گتھیوں کو سلجھا دیا. پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے میرے لیے موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی. اس سے آج کسی کو کیا لگے, انبیاء کرام کے مشن کی بات قرآن نے کی, ان کے زندگی میں آنے والے مختلف حالات اور واقعات کو پیش کیا, لیکن اس کا صرف وہی حصہ نمایاں کیا کہ جس حصے میں کچھ ہدایت کی بات تھی. دنوں کو منانا, میموریل ڈیز کو اپنانا, یہ تو بعد والوں کی باتیں ہیں, لیکن اتنی بات سمجھ آ گئی کہ چاہے وہ 60 یا 70 80 سال کی عمر تھی, ابراہیم علیہ السلام نے اس میں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ سہی ہوں, کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دی ہوں, لیکن وہ ختم ہو گیا. اور آج ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ آج دنیا کے مختلف حصوں سے کئی لوگ مل کر ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں دیکھیے کم و بیش 2 بلین مسلمان ہر سال ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ جو ریچولز ادا کرتے ہیں, اور جو ہی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہیں. آخر کیا خوبیاں تھیں؟ وہ گزر گیا لیکن اجر ختم نہیں ہوگا. وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ والی کیفیت ہے. تو بات یہ ہے کہ جاری رہے گا تا ابد اسوہ خلیل کا. ابراہیم علیہ السلام عظیم المرتبت پیغمبر تھے, کیا ان کی باتیں کی جائیں؟ سب سے پہلے عباد اللہ کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں. خود اللہ کا بندہ بننا یہ سب سے پہلا بنیادی تقاضا ہے جو اللہ کسی بھی انسان سے چاہتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سب سے پہلا گول, دا لیسٹ منیمم مطالبہ رب کا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابراہیم علیہ السلام ایسے عبد بنے کہ اندھیروں میں آنکھ کھولنے کے باوجود آزر نام کے باپ, جو کہ اپنے دور میں نمرود کے دربار میں ایک بہت اعلیٰ حیثیت رکھنے والا ایک وزیر تھا, और आज के दौर में एक सुपर पावर के वजीर होने के नाते से जो लग्जरियस लाइफ हो सकती थी और जो प्रोटोकॉल और जो मजबूरियां और हालात थी वो सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी थी। लेकिन दुनिया में तो देखा गया कि दौलत और माल और मर्तबा, हुब्बे जार हुब्बे माल इंसान के हक में बढ़ते हुए कदम रोक लेती है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप अब्द बने ही रहे। हर बच्चा दुनिया में आता है नूरे फितरत साथ लेकर आता है। अल्लाह के नबी की हदीस आप सब कई बार सुन चुके होंगे कि बाद में फिर माँ बाप उसको क्या बना दें, ये माँ बाप की बात है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अंधेरों के घर में पैदा किए गए, या ऐसे ही है कि जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा चिराग। और नूरे फितरत जो अल्लाह ने हर बच्चे की तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर डाल दिया था, आपने उसको बुझने नहीं दिया। अमूमी तौर पे हम हालात और माहौल और ख़ानदान और फैमिली का नाम लेकर उन चीज़ों से रुक जाते हैं, और बाज़ दफ़ा हम अपने बच्चों के बारे में भी ये बातें कहने लगते हैं, बच्चों को कैसे पाले, माँ बाप तवज्जो नहीं देते कभी कुछ। याद रखिएगा, जिसके ईमान की अल्लाह ने हिफाजत करनी होती है वो आज़र के घर में रह कर भी खलीलुल्लाह का लकब पाता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन को मसख नहीं होने दिया और अपने आप को कभी बाप के सामने पेश किया, कभी बिरादरी के सामने पेश किया, जो ख़ानदान के सामने पेश किया, जो आज के इस सेशन से पहले की चीज़ों में हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक देख चुके हैं। लेकिन बात यह है कि जितना ज़्यादा बंदा अब्द बनता है उतने उसके खलीलुल्लाह या उससे करीब के किसी दर्जे पर जाने के इम्कानात होते हैं। आपके मेरे लिए इसमें अमल क्या है? मुझे यकीन है कि आप सुनने वाले मुख्तलिफ फील्ड ऑफ लाइफ में से हैं। अगर आप एक अपनी ज़िंदगी के अभी इब्तदाई दौर की एक यंग टीनेजर हैं तो आपको अब्द बनना है। अल्लाह का बंदा बने बगैर आप और मैं सब कुछ हो सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। और जब ये बंदा काम कर लेता है तो फिर दूसरा तकाजा जो अल्लाह ने आज उम्मत मुस्लिमा को भी दिया है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और वो क्या है कि आप दूसरों को रब से जोड़ो। ये एक तवील मौजू है, इस पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सेशंस भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ आपको मैं इब्राहिम का तारुफ देना चाहती हूँ अलैहिस्सलाम। क्यों इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा की पुकार है कुरान में, दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, दुनिया का की सबसे मोस्ट ऑथेंटिक किताब। दुनिया में लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, किस बुक में है, किस वेबसाइट पे है, तो कुरान जो इतनी खूबसूरत किताब है उसमें अल्लाह ने इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा की बात करके क्या बता दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ यह है कि खुद को अबूदियत के दर्जे पे रखा बल्कि इंसानियत की मदद की। और आज अगर उम्मत मुस्लिमा से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और चहेती उम्मत से जो दूसरा तकाजा है वो यही है कि तुम रब के बने हो, अब दूसरों को भी रब से जोड़ो और तुम उम्मत वसत बनो और तुम हो ही तुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास वाली बात। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अगर देखें तो वह अंसारुल्ला थे। जब आपको समझ आ गई कि नमरूद खुदा नहीं हो सकता और खुदाई का दावा करने वाले सब मुंह की खाते हैं, तो फिर नतीजा क्या हुआ कि आपने अपने ख़ानदान और बिरादरी के सामने दावत हक पेश की। कुफर और शिर्क की बातें हैं जो हम पीछे देख चुके हैं, किस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूबसूरत तरीके से पहले बाप के सामने अल्लाह का पैगाम रखते हैं, तो फिर ख़ानदान और फिर बिरादरी के सामने रखते हैं, और इस तरीके से शिर्क की वो सारी बुनियादें हिला देते हैं और फिर जिसके नतीजे में उनको आग में डाला जाता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ये सारे काम कर चुके जिसके ऊपर अल्लाह को प्यार आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं डरे, नहीं दबे, नहीं बिके, और आखिर बिलाखिर लोगों ने जब दावत दी कि हमारे साथ मेले में चलिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसमें इन्नी सकीम कहकर माजरत कर ली। और पीछे से फिर आप कह सकते हैं कि अगर बुराई को हाथ से रोक सको तो रोकने की एक सुन्नत भी पूरी की, और उस जुर्म की पादाश में लोगों ने आपको आग में भी डाल दिया और उस आग से वो निकाले गए खलीलुल्लाह बनाकर। वकुलना या नारुकुनी बर्दम वसलामन अला इब्राहिम। तो ये मराहिल होते हैं, आपकी मेरी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। ये अलग बात है कि हम उस वक़्त कितने तैयार हैं। तो अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया, और खलील की बहुत सारी वजाहतों में बस एक सुन लीजिए, खलील एक ही होता है। अरबी ज़ुबान में मोहब्बत के 10 दर्जे हैं, दोस्ती के कई नाम हैं, कहीं विलायत है, कहीं हबीबुल्ला और कहीं कुछ और नाम है, लेकिन खलील, खिल्लत, खाली, बेस्ट फ्रेंड एक होता है बस। तभी तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मैं अल्लाह को खलील ना बनाता तो मैं अबू बकर सिद्दीक को खलील बना देता। और आप खलील के लफ्ज़ को इससे समझ लीजिए कि अरबी ज़ुबान में अगर डिक्शनरी में देखें तो खलील कहते हैं इस चीज़ को कि लुकमा ना नीचे जाए और ना ऊपर आए, गले में फंस जाए। क्या पता चला? खलील वो शख्स होता है जिसके बगैर आपका कोई काम होता ही नहीं है, जिसकी मौजूदगी हर वक्त आपके लिए ज़रूरी हो। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे खलील बनाया, ये सब बातें आपको मुझे क्या बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पढ़ने की ज़रूरत है। हर साल जब भी ज़िलहज आता है और ईद कुर्बान और हज और उमरे के मनासिक की बातें होती हैं तो हम याद तो रखते हैं, खुतबों में भी बात होती है और स्पेशल प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा जिस दोराहे पे खड़ी है, पूरी इंसानियत कोरोना वायरस के सबक के पढ़ाए जाने के बाद एक नया सांस ले रही है, ऐसे लग रहा है रेनोवेशन हो रही है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम इस साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को समझो और उनके मिशन को देखो। तो सुन्नत इब्राहिमी क्या थी, आपका मिशन क्या था? दीन के असल वारिसों के लिए एक मिसाल बनाकर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आपके मेरे सामने रखी। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइटल, सबसे ज़्यादा अलकाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए गए। हम देख चुके हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम 69 टाइप कुरान में, 25 सूरतों में इनका नाम है, 250 पारे तकरीबन बन जाते हैं अगर आप सारी आयतें जमा कर लें। लेकिन इब्राहिम कौन थे? बानी हनीफियत थे। हनीफ होने का बानी बन जाना, इससे बड़ी खूबी क्या है? लोगों को यकसू करना, सबसे कटकर एक रब का बनाना, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई सीखे। फिर पूरे घराने को अल्लाह के रास्ते में लगाने की सुन्नतें कायम करने वाले खलीलुल्लाह थे। खालिक़े हकीकी के सामने तस्लीम और रज़ा के पैकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे कि वह इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल इन्नसलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन की मुंह बोलती तस्वीर थे, चलते फिरते थे। आपने अल्लाह के रास्ते की हर रुकावट को बड़ी खुशी से रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल आपने कभी हर्डल रेस देखी या खेली होगी, रास्ते में बहुत सी रुकावटें लोग रख देते हैं और आप एक एक रुकावट को दूर करते हुए भागते जाते हैं, जो सबसे पहले मंजिल पे पहुंच गया वो जीत गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कुछ ऐसे ही थे। कौम हो के मुआशरा हो, कुफ्र और ज़ुल्म के इज्तमाई निज़ाम के खिलाफ तन तनहा खड़ा होना सिखाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। कहीं अल्लाह इनके बारे में अल्लज़ी वफ़ा की बात करते हैं, कहीं अल्लाह ताला इनको एक उम्मत कहते हैं, कहीं इनके उसवे को बेहतरी की तौर पे कबूल करने की बात कहते हैं, और कहीं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से बेरग़बती करने वालों को सफ़ीख़ा नफ़सहू कहते हैं। कह लीजिए कि हर मौके पे रिश्तों की कुर्बानी, जज्बात की कुर्बानी, जगहों की कुर्बानी देने वाली हस्ती का नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। कुर्बानी का असल मफहूम समझाने वाले इब्राहिम थे कि क़र्रब युक़र्रिबु तक़रीब, हर वो अमल जो क़ुर्ब दे दे। हम हर साल एक बकरा कुर्बान करके या इससे कम वेश कुछ भी करके अल्लाह का क़ुर्ब पाना चाहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रिश्तों के बकरे भी ज़िबा किए, जज्बात की कुर्बानियाँ भी दीं, अपनी जगहों की कुर्बानियाँ दीं। इससे पीछे हम देख चुके 4-6 जगहों पर एक से एक करके हिजरत करते गए और कुर्बानी का असल मफहूम भी सिखा गए, और बाय चॉइस नॉट बाय चांस। आज हम कहीं फंस जाएं तो फिर तो क्या करें, जान तो छुड़ानी तो पड़ेगी ना, ना किया तो फिर ये होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर जगह अपनी चॉइस से रब को राज़ी किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे पढ़ने के लिए ये वक्त बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं आज आपको उस वाक़े पे ले चलूँगी जो ज़िलहज के दिनों की जान है, और वो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे जिसको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, उनकी विलादत बासआदत। कैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 साल की उम्र 86 ईयर की एज में एक बेटा अता किया। आम इंसानों की तरह औलाद जैसी खूबसूरत नेमत की ख्वाहिश इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी तक उनको औलाद की नेमत से ज़रा अलग रखा था। रब्बे ताला से दुआएं मांगते हुए दिखते हैं इब्राहिम। सूरह सुआफात की आयत 100 में आता है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ए मेरे परवरदिगार, मुझे नेक बेटा अता फरमा, नेकों में से दे दे। एक बार नहीं मांगा, बार बार मांगा। ये नहीं कहा कि एक बार नहीं मिला तो चलो किसी बाबा के पास चलते हैं, चलो अब ठठे वाले के पास से नहीं मिला तो पंजाब वाले के पास जाते हैं। नहीं, रब्बी, किसी को बीच में नहीं डाला, रब्बी 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 हबली, दे दे, वहाब है तू। और देना तो नेकों में से देना। और अल्लाह ने खलील की जुबान से अलैहिस्सलाम की दुआ निकली हुई शर्फ़े कबूलियत से नवाजा। और क्या पैगाम आ गया, सफ़ात 101, फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने आपको एक बुर्दबार बेटे की बशारत दी। सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दुआएं मांग रहे थे तो ये दुआएं किस बेटे की सूरत में कबूल हुई? क्या वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में हुई? यानी एक बड़ा मारूफ जुमला है जिसकी डिटेल्स में तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लेकिन ये अपनी जगह मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में और आज मुसलमानों के भी मुख्तलिफ गिरोहों के बीच में एक क्वेश्चन मार्क है कि ज़बीहुल्लाह कौन थे? क्या वो इस्माइल हैं जो हज़रत हाजरा के बतन से पैदा हुए, या फिर ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है जो बीबी सारा के बतन से पैदा हुए? तो याद रखिएगा, कुरान में दो मुकाम ऐसे हैं जहाँ ये खुल के बात समझ आ जाती है कि ज़बीहुल्लाह असल में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। सूरत हूद खोल लीजिए आयत 69 में, उसमें इसहाक के बाद याकूब के पैदा होने की खबर देकर अल्लाह ने बता दिया कि अगर इसहाक ज़िबा हो जाते या अगर वो ना रहते तो याकूब उनका बेटा कैसे होता। अंबिया कराम को नबूवत की ज़ुबान से बहुत सारी बातें पहले ही बता दी जाती हैं, तो लिहाजा हमारा इस वक्त ये मौजू तो नहीं है, लेकिन इतनी बात याद रखिएगा कि अल्लाह ने कुर्बानी मांगी और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में वो कुर्बानी खलीलुल्लाह ने पेश कर दी। ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिला। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला बंदे को आज़माता है। कुर्बानी के लिए खुद तैयार हो जाना, ये हिल्म और बुर्दबारी की आला मिसाल है। हज़रत इस्माईल की बिशारत पर अल्लाह ने जो ये बात कही थी ना कि फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो ये सिफत बताती है कि खलीलुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम है, क्योंकि जिसमें हिल्म नहीं होगा, बुर्दबारी नहीं होगी, वो बाप का ख्वाब जो अभी एक ही बार देखा है उस पे अपनी गर्दन कैसे झुका देगा? आप वाकया पढ़ते हैं, आपको हैरत हो जाती है। तो क्या पता चला कि बुर्दबार बेटा सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी, और अल्लाह सुबहाना ताला कैसे उनकी बात पेश करता है? तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ पेश की, अल्लाह ताला ने उनको कैसे इब्राहिम का इम्तिहान बना दिया। और आप इस बात पे इतना हैरान होंगे, कितना लोग इन बातों की बहसों में पड़ते हैं, वो इसहाक थे कि वो इस्माईल थे। ठीक है भाई, आप जो कहते हैं उसको रखिए, आप क्या हैं? एक बच्चा जिसकी दुआएं मांगी जाएं, 86 ईयर्स की एज, आलमोस्ट एक सदी के करीब, बुढ़ापे की बातें हैं, लेकिन इसके बाद वो बच्चा पैदा हो और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको मांग ले। आइए जरा इस वाक्य को कुरान की नज़र से देखते हैं और फिर अपनी खुश्क आंखों को गीला करते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में कामयाब होने पर अल्लाह क्या इनाम देता है? सूरत अस्साफात की आयत 103 से 112 जान है इस वाक्य की। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक्ता रुया इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम वतरक़ना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन वबशरनाहु बिसहाक नबियम मिनस सालिहीन। कुर्बानी देने में कामयाबी पर आप अलैहिस्सलाम को मेंढा दिया गया और ये बशारत दी गई कि हम आपको एक और बेटा भी देंगे और जिसका नाम हमने खुद इसहाक रखा है और हम इसको नबी और सालिह बनाएंगे। जब आप इन आयात को पढ़ते हैं तो आपकी हैरत गुम हो जाती है। कैसा वो वक्त था, कैसा वो मंजर था, क्या ज़मीन ना कांपी, क्या आसमान हरकत में ना आ गया, क्या बहते हुए पानी जोश में ना आगे होंगे कि ना जमीन ने ये वक्त देखा ना आसमान ने ये मंजर कभी देखा, कैसे बाप बेटा फलम्मा असलमा दो नई मुसलमान हो गए। लफ्ज असलमा पे हाईलाइट करके गौर कर लीजिए कि ये वो कैफियत होती है कि जो इंसान को अल्लाह के आगे ले आती है। दोनों मुसलमान हो गए। लिखिए चंद बातें, शायद आप इस वाक्य में से अपने लिए डे टू डे लाइफ में कुछ बातें ऐसी ले जाएं कि जो आपको इस बात के सुनने का बेहतरीन फायदा दे दें। याद रखिएगा कि हम जो खुद को मुसलमान कहते हैं ना, तो मुसलमान एक दफा नहीं होता बंदा, वो तो बच्चा दुनिया में आया, इस्लाम अल्लाह ने दे के भेजा, माँ बाप ने कान में अजान दे दी, बड़े हुए चले को रिवॉर्ड है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दी। असल बात क्या है कि असलमा का इम्तिहान दिन में कई बार होता है। असलमा क्या है? एक हुक्म से दूसरे हुक्म तक। लिखिए, हमारा इस्लाम हुक्म से हुक्म तक रिन्यू होता है, ये रिन्यूअल होती है। हम एक हुक्म मान लेते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं, फिर अल्लाह दूसरा हुक्म लाने तक हमें मुसलमान रखता है, फिर दूसरा हुक्म आता है, फिर अगर वो मान लेंगे तो आप कह लीजिए कि वी आर मुस्लिम। एक हुक्म से दूसरे हुक्म तक, फिर अल्लाह अगला हुक्म देता है, मसलन फजर है, फजर की नमाज पढ़ी, अस्सलातु खैरु मिनन नौम सुनकर उठ गए, तो आपने नमाज पढ़ी तो आप मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला बीच में कुछ ग्रेस पीरियड देता है फजर से जोहर तक का। इसको जरा सा समझिए, आपका लाइसेंस रिन्यू होता है, आपका पासपोर्ट शिनाख्ती कार्ड 10 साल 5 साल 20 साल के लिए होता है, फिर उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है ना। आप ड्राइविंग ले लें, फिर उसके बाद एक के बाद एक टेस्ट करना है। कभी कभी कुछ लाइसेंस कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एक साल के लिए मिलते हैं, तो आपको कुछ कागज जो कीमती होते हैं ना, वो रिन्यू कराने पड़ते हैं। ईमान भी एक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ है, ये दुनिया का कीमती तरीन डॉक्यूमेंट है, जिसको क्यामत के दिन आपके अमालनामे में जब डाला जाएगा तो 99 दफ्तर गुनाहों के हल्के पड़ जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट आपको जताएगा, लेकिन ये बहुत जल्द एक्सपायर होता है। आप 10 साल के लिए मुसलमान नहीं हुए कि अच्छा 10 साल के बाद एक दफा जाकर फिर कलमा पढ़ेंगे या उमरा कराएंगे तो मुसलमान होंगे। एक दिन में अल्लाह आपको 10 बार मौका दे, 20 बार दे, जब कोई हुक्म आया, इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तुले रब्बिल आलमीन। याद रखिए, ये अल्लाह के वादे हैं। तो फलम्मा अस्लमा, वो दोनों मुसलमान हो गए। किस बात पे? बेटा कटने के लिए और बाप काटने के लिए। और इब्राहिम मशवरा मांग रहे हैं, बेटा बता, फंजुर माजा तरा, मेरे बेटे देखिए ये मुझे क्या दिखाया गया है। मशवरे की अहमियत, हुक्म दे सकते थे। आज पेरेंटिंग में बहुत बड़ा एक कसूर है माँ बाप का, दिल अल्लाह से जोड़ते नहीं और कहते नमाज पढ़ो, हुक्म देते हैं। माएं भी ये गलती करती हैं, बाप भी करते हैं। हालांकि हकीकत क्या है, फंजुर माजा तरा, जो काम मशवरे से होता है उसमें खैर होती है। बेटे का हिस्सा भी डाल रहे हैं और बेटे को चेक भी कर रहे हैं। और बेटा भी क्या था, जिसको अल्लाह खुद कहते हैं फबशर ना हो बि गुलाम इन हलीम, उसने ये नहीं कहा बाजी देख लेना, ख्वाब भी तो आया, थोड़ा सा इंतजार कर ले फिर आ जाएगा। ख्वाब का क्या, पहले ही ख्वाब पे आप चल पड़े? ना ना ना, पहले ही ख्वाब पे लिटा दिया। ये है फलम्मा असलमा, फलम्मा असलमा। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे पहले सवाल पे लब्बैक कहने वाला बना दे। पहला हुक्म, जैसे सिद्दीक हर मौके पे खड़े हो जाते थे ना, हर जगह सिद्दीक का हिस्सा डलता था, अल्लाह हमारा भी डाल दे। कैसे अल्लाह सुबहान तआला ने इब्राहिम की हिजरतों में मांगी हुई दुआएं एक प्यारे बेटे की सूरत में कबूल की, क्योंकि सफर में भी दुआएं कबूल होती हैं और हिजरत और मुहाजरत में भी दुआएं कबूल होती हैं। और बेटा देखिए कैसे चल पड़ा, बेटे का भी इस्लाम रिन्यू हो गया और बाप का भी हो गया। इबलीस को अपने ईमान को बचाने के रास्ते में जो रुकावट थी वो यही थी, अल्लाह के हुक्म को न मान सका। सजदे का इनकार करने से पहले तक मुसलमान था इबलीस, लेकिन जब आदम को सजदा करने का हुक्म दिया अल्लाह ने, लेकिन उस वक्त वो इस्लाम न कर सका, तो क्या पता चला? बहुत खतरे की बात है। मैं आप अपने लिए थिंग्स टू डू में लिख लें अपनी लिस्ट में कि जब कोई हुक्म आए, वो छोटा भी हो सकता है वो बड़ा भी, वो अकायद से लेके इबादात और मामलात और अखलाकियात के दर्जे का भी कोई हो सकता है, वो फराइज का भी कोई हुक्म हो सकता है, वो सुन्नत और नवाफिल का भी हो सकता है, अल्लाह चेक कर रहा होता है भला ये क्या करते हैं। हमारा दीन कोई सिर्फ फतवे का दीन नहीं है। कभी अल्लाह कुछ चीजों में रिलैक्सेशन करके तकवा भी देख रहा होता है कि बंदा यहां क्या करता है। एक नमाज पढ़ी, रिन्यूअल ऑफ फेथ, जोहर पे इनकार, कैंसिल हो गया आपका कार्ड, जाइए अपने आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि मन तरका, जिसने नमाज छोड़ दी फकत कफरा। तो ये जो ग्रेस पीरियड दो हुक्मों के बीच के ना, इस पे बी केयरफुल। रमजान गुजरा, आप जिलहज के पास आ गए, इन बिटवीन जो हुआ इन 10 दिनों में माफियां करा लीजिए, वरना ये खत्म हो जाएगा। तो फलम्मा असलमा, जिबा करने वाला और जिबा होने वाला दोनों तैयार हैं। इस हुक्म को मानकर दोनों मुसलमान हो गए। क्यों लामा इकबाल कह गए कि चूमी भी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। कहते मैं खुद को मुसलमान कहते हुए लरसता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद मुश्किलात बड़ी आती हैं। हमारी तो ये ला ही मुकम्मल नहीं होती, इल्ला तो बाद में होगा। हम तो ये ला की तलवार से अपने आप को, अपने नफ्स के बुत को, अपने मुआशरे के बुत को, अपने खानदान के बुत को ज़िबा न कर पाए। हर एक ने कोई बुत बगल में दबाया हुआ है। वो कहते हैं ना, ब्राहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से हो, हवस छुप छुप कर सीनों में बना लेती है तस्वीरें। हम चाहते हैं कि इब्राहिम जैसे बने, लेकिन हवस का क्या करें जो सीनों में छुपी हुई है। हर एक का कोई ना कोई वीक पॉइंट है। हम कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोर्सेज करते हैं, कराते हैं, सेमिनार्स करते कराते, हम दीन के खादिम मशहूर हैं, लोग हमें अंसारुल्लाह कहते हैं, लोग हमें जिम्मेदारान कहते हैं, लोग हमें कुरान टीचर्स कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक का कोई वीक पॉइंट होता है। उसको ढूंढिए, क्योंकि रस्सी वहीं से टूट जाती है जहां से कच्ची हो। चेन गले में गोल्ड की पहनी हो, जरा सी कच्ची होगी वहीं से टूट जाएगी। रस्सी भी और स्टिक भी टूट जाती है। हम वहीं से टूटते हैं जहां हमारे अंदर ख्वाहिश आ जाती, कोई हवस आ जाती है। तो ऐसा ना हो कि लोग आपको जन्नतुल फिरदौस में ढूंढ रहे हो और आप अल्लाह ना करे जन्नत के दरवाजे पे बाहर आराफ पे खड़े किए गए हो, कि पहले खड़े हो जाओ, पहले जरा अपने असलमा को तो चेक करके आओ।